इसके बाद अगली सूरत है रोम, बहुत ही खूबसूरत सूरत है, एक कौम के नाम पे भी है, आज के दौर में एक मुल्क भी रोम के नाम पे है। 60 आयात है इसकी। पहली 6 आयात में मुसलमानों के लिए खुशखबरी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, हरूफ मुकत्तात हैं, गुलिबतिर रोम, फी अदनल अर्दि वहुम मिन बादी गलबिहिम सयग्लिबून। इसमें रोम के गलबे और मगलूब होने की बातें। आपका मेरा इससे क्या ताल्लुक है? मुसलमानों के हालात बड़े तंग थे, लगता नहीं था कि कभी भी ये सर उठा के जियेंगे। अल्लाह कहते हैं फी बेदी सिनीन, कुछ सालों के अंदर मुसलमानों के हालात भी बदलेंगे। जिस दिन रोम फतह होगा उसी दिन मुसलमानों का हाल क्या होगा? वह यौम इज़िन यफ़रहुल मोमिनून बिनसरिल्लाही यंसुरु मैयशा वहुवल अज़ीज़ुर रहीम। एंड जो दिन ग़ज़वे बदर में मुसलमानों की मिसाली फतह का था, जिसको यौमुल फुरक़ान भी कहा गया, अल्लाह का ये वादा पूरा हुआ। ये उन आयात में से जिनके बारे में आप कह सकते हैं फोरकास्ट, पेशन गोइयाँ। कुरान की कुछ आयात ऐसी ही हैं, और ये कुरान की सच्चाई की दलील है कि जो बात अल्लाह ने कही वो चंद सालों के अंदर हो गई। फिर इसके बाद आखिरत वाकई होने के दो सबूत हैं, आयत 7 और 8 में, या लमूना ज़ाहिर मिनल हयात दुनिया, क्या वो दुनिया का ज़ाहरी हिस्सा देखते हैं और आखिरत से वो गाफिल हैं? आप देखिए, ये एक थॉट प्रवोकिंग क्वेश्चन है। अल्लाह ताला ने इधर दुनिया के ज़ाहरी हिस्से पे उलझने वालों को बता दिया कि तुम सारा दिन दुनिया 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 करते हो, कभी अच्छी कभी बुरी, कभी जायज़ कभी नाजायज़, और अगर जायज़ भी करते हो तो ये दुनिया इतनी बड़ी थोड़ी है कि हर वक्त तुम इसी में उलझे रहो। तो क्या पता चला कि दुनिया के मामलात में महारत रखने वाले नमाजों से गाफिल हो जाते हैं। आपकी कितनी नमाजें डिले हो रही हैं? चलिए रमज़ान हो तो फिर तो ठीक होता है, उम्रे पे गए हैं तो फिर तो वक्त से पहले तैयारी करके बैठे हैं कि हरम में जा रहे हैं। आम दिनों में क्या होता है? नियत कीजिए, हय्य अलस्सलाह के साथ ही वुजू करके जाए नमाज करो। जो नमाज वक्त पे पढ़ेंगे वो आसान होगी, डिले करते जाएंगे मुश्किल होती जाएगी। हम टालते रहते हैं, अच्छा ये कर लूँ, अच्छा खाना बना लूँ, अच्छा अब खिला लूँ, अच्छा अब किचन साफ़ कर लूँ, अब चाय पी लूँ, और जोहर असर में ढल जाती है। फिर इस तरह मर्द बहुत सारे कारोबारों में लगे रहे, ये कस्टमर भुगत ले, ये कर लें, हत्ता के जुमा तक चला जाता है, बरकत नहीं होगी आपके काम में। दूसरी बात इसमें जो है वो क्या है कि मईशत के तमाम असबाब जानते हैं, इनको 2+2 भी आता है, भाव ताव करना भी आता है, महंगी चीज़ सस्ती कैसे खरीद लेते हैं इनको ये भी आता है, और अपनी चीज़ महंगी करके कैसे बेचते ये भी आता है, मगर नहीं जानते तो आखरत को नहीं जानते, आखरत से ला इल्म है। कई लोग स्मार्ट फिर दुनिया लेकिन डल फिर आखिरा, आखरत के मामले में दुरुस्त नहीं है। अल्लाह हमें दुनिया और आखरत दोनों की सही समझ अता कर दे। आगे है जी आयत नंबर 9 से 10, सरकश कौमों के इंजाम से सबक हासिल करो। अवलम यसीरु फिल अर्दी, क्या फिर उन्होंने सैर नहीं की ज़मीन में? फ़यन्ज़ुरु कैफ़ काना आक़िबतुल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, फिर ज़रा वो इंजाम तो देखते उनका जो इनसे पहले थे, कानू अशद्द मिनहुम क़ुव्वा, वो इनसे बहुत शदीद है क़ुव्वत में, आज कह लीजिए वो सुपर पावर्स थी, उनको मान था अपनी बड़ाई का, और उन्होंने तो ज़मीन को खोद डाला फिर उसको आबाद किया, उसमें से बहुत हिस्सा जो कि आबाद किया, और आए उनके पास रसूल दलाइल लेकर, लेकिन फिर ऐसा ना हुआ कि अल्लाह उन पर जुल्म करता, वला किन कानू अनफुसहुम यस्लिमून, लेकिन वो खुद अपने नफ्सों पर जुल्म करते थे, फिर बुरा हो गया अंजाम उनका जिन्होंने बुराई की, और ये कि उन्होंने अल्लाह की आयतों को झुटलाया, वकानू बिहा यस्तहज़ियून, क्या पता चला दुनिया में कुछ को रिस्क बहुत मिल रहा है, बहुत सुकून है, खुशी है, बाहर देखने में फ्लरिश कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह कह रहे हैं कि अगर गलत कामों में बढ़ते जा रहे हैं तो एक दिन आएगा कि अल्लाह उनकी रस्सी को खींच लेगा जो कि आज उसने दराज की हुई है। फिर आगे आयत 11 से 16 में अहवाले आखिरा, आखिरत के कुछ हालात हैं। अल्लाहु यब्दुल खल्क सुम्मा युईदुहू, अल्लाह ने पहली बार खल्क को पैदा किया, दोबारा भी उसको करेगा, और फिर तुम उसी की तरफ लौट जाओगे या लौटा दिए जाओगे, और जिस दिन क़यामत कायम होगी, युबलिसुल मुजरिमून, मायूस होंगे मुजरिम, क्या पता चला कि दुनिया में दूसरों पे नजरें लगाने वाले मुजरिम थे, इसीलिए आगे कहा जा रहा है, और नहीं होंगे उनके लिए वहां कोई सिफारशी जो उनकी सिफारिश करे, और वो तो उनके शिर्क से भी इनकारी होंगे। हमने तुम्हें कब कहा था कि तुम हमें बड़ा मानो और हमारी तरफ देखो, और इसी तरह से जिस दिन कयामत कायम होगी वो तितर बितर हो जाएंगे या तफरकून बिखर जाएंगे। हाँ, इसके बरक्स फामल्लजीना आमन हुआ मिलु सालिहत, आप जैसे अच्छे लोग जो ईमान ला कर अमल साले करें, फहुम फी रउदत युहबरून, वो तो बागात में होंगे, उनका तो बनाव किया जाएगा, उनको सजाया जाएगा, डेकोरेट किया जाएगा। और बाकी इसके अलावा दूसरा इंजाम भी है, क्या पता चला कि आखरत में हर बंदे के साथ उसके दुनियावी आमाल और उसकी नियतों के मुवाफिक काम होगा। अल्लाह ताला हमें दुनिया में अपनी फिक्र लगाए। आप देखिए, क्लासरूम में बैठा स्टूडेंट आज़ाद है, जो मर्जी लिखे, जितना मर्जी लिखे, और अगर आपने ये वक्त ज़ाया कर दिया और खाली पेपर दे दिया या उसमें उलट सुलट बातें लिख दी, एक दफ़ा पेपर आपके हाथ से गया फिर गया। कभी कभी आप कोई मैसेज कर रहे होते हैं, जब तक आप लिख रहे हैं आपकी मर्जी है, अंडू कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, अब चला गया। अब आप कहते हो, हो ये क्या हुआ, अच्छा चलो मैं इसको डिलीट करूं, अब तो डिलीट की ऑप्शन ख़त्म हो गई, किसी ने खोल कर देख लिया। तो आज नामे अमाल को लावा है, सांस चल रही है, किरामन कातिबीन हमारे अमाल लिख रहे हैं, अंडू कीजिए गलत चीज़ों को। मैं क्यों ज़ाया हूँ? अपने आपसे एक सवाल करें, क्या अल्लाह ने मुझे रोने के लिए भेजा है? क्या अल्लाह ने मुझे खपने खपाने के लिए भेजा है? जलने कुड़ने के लिए भेजा है? अपनी ज़िंदगी से नेगेटिविटी निकाल दें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हमारी बहुत सारी बीमारियाँ, हमारी महरूमियाँ सिर्फ हमारी सोच का नतीजा होती हैं जो कि नेगेटिव होती हैं। और फिर इसका एक खूबसूरत तरीका, सुबह शाम की दुआएं हिर्ज़ जान बना लीजिए। तो आयत 17 से 19 में कुछ इशारे हैं, और ये दुआएं आप लोग भी सुबह में पढ़ते होंगे। फस सुबहान अल्लाह ही न तुम सूद न वही न तुसबहून, बस पाक है वो अल्लाह जिसके नाम पे तुम रात करते हो और सुबह करते हो, और उसी की हम्द है आसमानों और ज़मीन में। और इसी तरह से शाम और जोहर के वक्त को, यानी इस कायनात की वो छोटी छोटी चीज़ें जो दिन रात आपके मेरे इर्द गिर्द हो रही हैं, उसको बुनियाद बनाकर बता दिया कि अपनी इसलाह कर लो। और आगे उसके बाद सूरह रूम में आप बार बार निशानी का लफ्ज़ देख रहे हैं, तो निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी, बहुत ही बड़ी, और वो क्या है कि एक मर्द और एक औरत का एक छत के नीचे खुशी से रहना, शादी। शादी का बंधन सुकून का बंधन होता है और होना चाहिए। आयत 20 से 21 में क्या पता चला, वमिन आयाति ही अन खलकुकुम मिन तुराब, ये तो उसकी निशानियों में से कि उसने तुमको मिट्टी से पैदा किया और फिर तुम एक बशर बन गए, फिर बिखर जाते हो इधर उधर, और ये उसकी निशानियों में से कि उसने तुम्हारे नफ्सों में से, हम नफ्सों में से तुम्हारी बीवियां या तुम्हारे जोड़े पैदा किए, क्यों ली तस्कुनू इलैहा, ये नोट कीजिएगा, ताकि तुम सुकून पाओ उनसे, और बनाया तुम्हारे दिलों में बीच में मवद्दा व रहमा। और इसमें निशानी है कौम के लिए, यतफक्करून, जो तफक्कुर करती है। बहुत ही खूबसूरत आयत है, मेरा अल्लाह, मैंने सबसे ज़्यादा इसी आयत पे लेक्चर्स दिए हुए हैं, शादी के मौजू पे, औरत का किरदार। देखिए, हम सब औरतें हैं ना, मैं खिताब ही आपसे कर रही हूँ, तो मैं मर्दों को क्यों कहूँ? हालांकि शादी में औरत और मर्द दोनों के पार्टिसिपेशन से सुकून आता है, लेकिन यहाँ जितने भी सीगे हैं ना, आप देखिए, हाँ औरत की तरफ है, इलेही हा ली तस्कुनू। हाँ, क्या पता चला कि, पता क्या चला कि निकाह का मकसद बाहम एक दूसरे से सुकून हासिल करना है। आप देखिए कि मोमिन लोग सोचते हैं कि निकाह का मकसद बच्चे पैदा करना है या बच्चे हो जाए, एक इफेक्ट तो है, यानी शादी के नतीजे में बच्चे पैदा होते हैं, इस्लाम में शादी के साथ ही होते हैं। और एक जुमला लिख लें कि वो मर्द जो किसी को बीवी बनाए बगैर माँ बना दे, वो कभी भी सुकून का जरिया नहीं बनेगा। पूरा वेस्ट आज इसकी तफसीर है, वो लोग जो शादी के बगैर ऐसे ताल्लुकात कायम कर लेते हैं, उनकी ज़िंदगियों में कभी सुकून नहीं आएगा। लेकिन याद रखिए कि मकसद तो ये नहीं है, वरना फिर जिनके बच्चे ना हुए उनकी तो शादी फेल हो गई। शादी का मकसद बाहम एक दूसरे से सुकून और बाहम मोहब्बत और रहमत का जरिया होती है शादी। और इसमें औरत का बड़ा किरदार है, क्योंकि मैं आपको ही बता सकती हूँ, अपने घर का सुकून बर्बाद ना कीजिए। एक मर्द को सजा ना दीजिए कि उसने आपको चूज किया, या उसने अपनी माँ के कहने पे आपसे शादी कर ली, या आपके बाप के कहने पे शादी कर ली। हम में से हर औरत खुद को पूछे, घर के सुकून और बेसुकूनी में मेरा कितना हिस्सा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो कल्चर है, देसी कल्चर, इसमें बहुत हद तक औरतें ऐसी ही होती हैं। हमारी माएँ, हमारी नानियाँ, दादियाँ बहुत ही ऐसी थी। आज वो तालीम जिसने लड़की को लड़का बना दिया, औरत को मर्द बनाकर बाहर और दुनिया के दूसरे कामों में भी डाल दिया, और तरबियत से वो चीज़ें निकल गईं। क्योंकि देखिए, जो बंदा अकोमोडेटिंग होगा ना दूसरे को जगह देने वाला, वो नहीं थकता। आप गाड़ी में सफ़र करके देख लें, कुछ लोगों के साथ आप बैठें वो बिल्कुल सुकड़ कर सिमट कर आपको जगह देने वाले होंगे, और कुछ चौड़े होकर आपको भी कहेंगे कि ज़रा और पीछे हो जाइए। किसके साथ सफ़र करके आप खुश होते हैं? आप उसके साथ खुश होंगे जो आपको अकोमोडेट करता है, जिसकी ज़िंदगी में आपके लिए जगह है। आप हर जगह आप ये कहते हैं, मेरे हकूक, मेरे लिए किया क्या, मुझे तुम्हारे घर आके मिला क्या। अल्लाह के नबी ने एक हदीस में जो बात कही उसका खुलासा ये कि तुम में से एक बरसों तक अपने बाप के घर बैठी रहती है। जाहरी बात है, शादी से पहले 10, 15, 20 साल की उम्र गुजारी होती है, और फिर जब अल्लाह का एक बंदा तुम्हें ले जाता है तो तुम कहती हो कि मैंने तुम्हारे घर में कभी खैर नहीं पाई। तो अपने घरों को पुरसकून बनाइए। इस पे आप सुनिए, मेरा घर मेरी जन्नत के नाम पे 3-4 लेक्चर आपको वेबसाइट में मिलेंगे, होम स्वीट होम भी, और बहुत कुछ। क्योंकि देखिए, क्या ज़िंदगी को आप मैदान जंग बनाएंगे? घर मैदान जंग बनेगा आपका, दीन का पता नहीं लगेगा। जिस दिल में सुकून नहीं है वो नमाज क्या पढ़ेगा, मुझे ये बताइए। कभी लड़ाई हुई हो और उसके बाद की नमाज आप कहते हैं मुझे पता ही नहीं मैंने क्या पढ़ा। तो बहुत कुछ है इसके ऊपर कहने को। अल्लाह ताला हमें अपने घरों में अपने शौहरों के लिए सुकून का जरिया बनाए। और आप देखिए कि मर्द के क्या नहीं होता शादी से पहले। माँ से ज़्यादा कोई अच्छा खाना बना के प्यार से खिला सकता है? बहनें कपड़े धो के इस्त्री करके खिपे ना देंगी, और बहुत कुछ करती हैं। बीवी से उसको क्या चाहिए होता है? मोहब्बत, इफेक्शन, साथ, उसको जहनी तसल्ली दे। आप देखिए कि दुख सुख साथ है, मर्द सारा दिन थके हारा आता है, बीवी खुशी से देखे, बीवी को देखकर उसके चेहरे की थकन दूर हो जाए। अल्लाह के नबी से पूछा गया बेहतरीन बीवी कौन सी है, तो जो बाकी चीज़ें थी उसमें एक और थी, और वो कहती कि जब उसको देखे तो शोहर खुश हो जाए। तो ज़रा अपने आप को आईने में देखिएगा कि जब शोहर के घर में आने का वक्त होता है तो हमारे हाल हुलियों से लेकर और हमारे कपड़ों से लहसुन प्याज की बू आने से तक और हमारे मूड तक, क्या मियाँ साहब का दिल खुश होता होगा? इल्ला माशाल्लाह। आगे चलते, अल्लाह की बेमिसाल कुदरतें और रहमतें जी, आयत 22 से 23। अल्लाह ताला की बेमिसाल कुदरतें और उसकी रहमतें हैं क्या? वमिन आयातिही खल्क़ुस समावाति वल अर्ज़, उसकी निशानियों में से है पैदाइश आसमानों और ज़मीन की। वख्तिलाफ़ु अलसिनतिकुम व अलवानिकुम, तुम्हारी ज़ुबानों और तुम्हारे रंगों का इख्तलाफ। पीछे बातें शादी की हो रही, शोहर बीवी के खूबसूरत ताल्लुक की हो रही, और यहाँ देखिए रंग और ज़ुबानों का फ़र्क, ये क्या है? अब देखिए कि आमतौर पर शादियाँ अपने ही कल्चर में होती हैं, बल्कि माशाल्लाह हम तो कहते हैं जी बिरादरी से बाहर हम करेंगे नहीं। हर बंदा अपनी ही बिरादरी ख़ानदान को बड़ा सबसे अच्छा समझता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी देखिए रंग ज़ुबान बदलती। आप उर्दू बोलते हैं, आपकी शादी इंग्लिश बोलने वालों से हो जाती है, अरबियों से हो जाती है, और रंग का फ़र्क कितना है कि रिवर्ट से हो गई, हो सकता है वो ब्लैक मुस्लिम हो, लेकिन एक छत के नीचे मुख्तलिफ रंग और मुख्तलिफ ज़ुबान वाले भी खुश रह सकते हैं। और एक बिरादरी छोड़ दीजिए, खाला पुप्पो या मामू मामू और इसी तरह चचा और जो बिल्कुल करीबी रिश्तेदार है, वहाँ भी शादियाँ हो जाएं तो कभी खुश नहीं रहते, तो करना क्या? आप देखिए कि इसमें बहुत बड़ी बात है हम सबके लिए, पीछे वाली बात है ना, उसी को ज़रा सा बढ़ाइए और अपने लिए आज एक क्राइटेरियन बनाए। नंबर एक, मैंने अपनी अगली ज़िंदगी ज़ाया नहीं करनी, जो हो चुका सो हो चुका। आज तक घर में बेसुकूनी थी, आज तक झगड़े थे, लड़ाइयाँ थी, नो मोर। आज मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैंने अपने घर वालों को खुशी देनी है, मैंने झगड़े का मौका नहीं बनाना। जो चीज़ रात घर में ऐसी जिससे इख्तलाफ हो, झगड़ा हो, आवाज़ें बुलंद हो, उसको डिस्कस नहीं करना। और उसके बाद अगर कोई मुझे मसला है अपने स्पाउस से, कभी कभी घर में रह के माँ बाप के बीच में इख्तलाफ होता है, भाई बहनों में से किसी एक से आपकी नहीं लगती, अगर मुझे घर के किसी फर्द के साथ कोई इशू है तो मैंने बैठ के बात करनी है, चाहे का कप हाथ में लेकर आपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया करें। सॉल्यूशन। ये थोड़ी है कि दुनिया आपका तमाशा देखे, फिर कोई आ रहा है इसको मना रहा है, उधर मना रहा है, फिर माँ के घर उठ के बच्ची चली गई, फिर खानदान के बुजुर्ग गए, फिर समझाया नहीं नहीं बेटा चलो चलो। ऐसा तो नहीं होता कि आप खुद अपने मियाँ के साथ बैठ कर अपने मसाइल को हल नहीं कर सकती। टाइम लीजिए, लोग डेटिंग शादी से पहले करते हैं, आप शादी के बाद करें। किसी अच्छी सी जगह पे, पुरसकून जगह पे चले जाएं, आपके पास तो समंदर भी है, समंदर के किनारे चले जाएं, चाय का कप कॉफ़ी का कप हाथ में लेके बात कीजिए। चलिए आज हम बात करते हैं कोल्ड फैक्ट्स, विदाउट इमोशन, बगैर रोए और चीखे चिल्लाए। याद रखिए, मियाँ बीवी की आवाज़ उनके कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। एक घर के अंदर क्या हो रहा है दूसरे कमरे में नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि घर है। अगर आपको लड़ना है तो मैदाने जंग में जाइए, झगड़े करने हैं तो बातिल से कीजिए। और अल्लाह ताला इधर जो निशानियां हमें दे रहे हैं उसमें आगे एक है मरने के बाद जी उठना, 24 से 27 में वमिन आयाति ही। और आप नोट करें कि हर चीज़ निशानी है, यानी दीज आर साइंस। कितनी नॉन यूजुअल बातें हैं। अल्लाह कहते मुर्दा ज़मीन के ऊपर बारिश बरसती है तो वहाँ सब्जा उग जाता है, इसी तरह बिजली चमकती है तो उसमें आवाज़ भी होती है और रोशनी भी होती है, तो तुम भी मरने के बाद दोबारा उठाए जाओगे। आज तुम नमाज के लिए नहीं उठते, आज तुम माँ के पुकारने पे नहीं उठते, लेकिन कल तुम कब्रों से ऐसे उठकर भागोगे जैसे कि तुम्हें किसी ने कंधे से पकड़कर उठा दिया। फिर उसके बाद शिर्क की नफ़ी के लिए एक मिसाल है 28 से 29 में, दरबलकु मसलम मिन अनफुसिकुम, उसने बयान की तुम्हारे लिए एक मिसाल तुम्हारे ही नफ्सों में से। यानी जो मुलाजिम और गुलाम दो चीज़ें हैं, आज मुलाजिम तो होते हैं, गुलाम नहीं होते। अल्लाह ताला ने यहाँ लौंडी गुलामों की बात करके एक शऊर को बेदार किया कि क्या तुम अपनी दौलत, अपनी स्टेटमेंट, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी चेकबुक अपने मुलाजिम या अपने गुलाम के साथ शेयर कर देते हो? अच्छा तुम भी ले लेना, मैं भी ले लूँ। अच्छा आधे पैसे तुम मेरे बैंक के ले लो, आधे मैं ले लूँ। मेरे नाम पे जितनी ज़मीनें हैं तुम ले लो, बाकी आधी तुम ले लो आधी मैं। जब तुम नहीं करते तो अल्लाह के बारे में ये क्यों कहते हो कि उसने फ़लां को इख्तियार दे दिया, फ़लां ने को बेटों के ख़जाने दे दिए, दौलत उसके हाथ में है, ये है वो है। मुराद जो है कि शिर्क के लिए इस ज़मीन पे बिल्कुल भी जगह नहीं। फिर फितरत की पुकार का तस्करा है, और वो क्या है कि अल्लाह की मुकम्मल इताअत करो। आयत 30 से 32 में आपकी मेरी फितरत की पुकार है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, फाकिम वजह का ले दीनी हनीफा, फितरत अल्लाह लती फतरन्ना सा अलैहा। और सूरत रोम की खूबी लिख लीजिए कि इसमें फितरत का लफ्ज़ बहुत दफ़ा भी आया और इसको झंझोड़ा गया। फितरत क्या है? जिस पे बच्चा पैदा होता है, किसी को बताना नहीं पड़ता, दूध भी पी लेता है बच्चा। फितरतन अल्लाह को एक मानता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने चाइल्डहुड में क्या कहा था? इन्नी अब्दुल्ला। बाद में फिर हम अपने माहौल की वजह से ख़राब होते हैं, तो यहाँ फितरत के साथ ही जो बात करके मुनीबीन इलही, उसकी तरफ रजू करने वाले, इनाबत। आप देखिए इनाबत समझिए, आपका दिल थोड़ी थोड़ी देर बाद अल्लाह की तरफ झुके। मिसाल देती हूँ कि आप कहीं नई जगह पे जाते हैं, आपके हाथ में फ़ोन है, आपका फ़ोन खुद ब खुद सर्चिंग पे जाएगा, वाईफाई ढूंढ रहा है। आप उसमें से कोई क्लिक भी कर दें, घूमते घूमते बिलाखिर वो पासवर्ड मांगेगा। कभी ऐसा भी होता है कि आप किसी घर में पहले गए और आपने उनका पासवर्ड यूज़ किया, आप यकीन करें एक नहीं 2-3 साल बाद भी आप उनके घर चले जाएं और उन्होंने ना पासवर्ड चेंज किया, ना अगर अपना नेट का वो सिस्टम चेंज किया, आपका फ़ोन फ़ौरन कनेक्ट होगा। ये जो सर्चिंग है ना, ये है इनाबत। हमारा दिल सर्च कर रहा होता है कि मैं अल्लाह को एक मानूँ। क्यों ज़िंदगी को ज़ाया कर रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों में? आप दिन रात अपने अल्लाह के इर्द गिर्द क्यों नहीं घूमते? खुले नस्सलाती व नुसुकी व माहया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपने सारे तवाफ़ जाकर खाना काबा के गिर्द ही क्यों करने हैं? दुनिया में अल्लाह के हुक्म के गिर्द घूमिए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक यहाँ बोलिए, अपने लिए दुआ करें, अल्लाह मुझे ज़ाया ना करना, अल्लाह मुझसे नेकियाँ ले, अल्लाह अगर तूने मुझे कोई खूबी दी है तो मेरी अच्छे कामों में इस्तेमाल करा, मेरे और लोगों के नफ़े का बना दे मुझे। और इसी तरह से फिर अल्लाह से डरने और नमाज़ों के कायम करने की बात करके आगे फिर एक तस्वीर का दूसरा रुख दिया जा रहा है, और वो है इंसानों का गैर मुतवाजन तर्ज़ अमल। आयत 33 से 37 है, इसको भी ज़रा सा तवज्जो से देखिएगा। आप देखिए कि कुरान पढ़ने के बाद कम से कम एक चीज़ तो बंदे को समझ आ जाती है कि इस ज़मीन पे शिर्क की ज़रा भी गुंजाइश नहीं है। वैसा मसन्ना सदुर, बंदे को कोई तकलीफ आती है, सोचिए जरा, आपको आई कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई भाई बहनों का गम, कोई फौत हो गया, दाऊ रब हम फौरन पुकारते हैं अपने रब को, मुनी भी नहीं लई, दोबारा मुनीब आ गया, इनाबत छुकाओ, सर्च करना, अल्लाह की ज़रूरत को महसूस करना, यानी दुख में तो फौरन अल्लाह की तरफ जाते हो, हाँ सुम्मा इज़ा ज़ाक़हुम मिन्हु रहमा, फिर जब हम उसको अपनी तरफ से कोई रहमत चखा देते हैं, इज़ा फरीक मिन्हुम बि रब्बिहिम यशरिकून, सब तो नहीं लेकिन एक गिरोह ऐसा है जो अपने रब से शिर्क करता है, कैसे ली यकफुरु बिमा अतैना हूँ, ताकि इनकार करे, न शुक्री करे उस चीज़ की जो हमने उसको दी, फतमत्ताउ फसौफ तालमून, थोड़ा सा इंतज़ार कर लो फिर तुम जान लोगे। आप अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ सोचिए जिसकी आपको बड़ी तलब थी, शादी हो जाए, बच्चे की शादी हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, बेटियों की शादी नहीं हो रही, रिश्ते नहीं मिल रहे, रिश्ते वालियों को बुला रहे हैं, हाय रिश्ता रिश्ता, चले बेटे की नहीं हो रही, लड़की नहीं पसंद आ रही, जहाँ बात जाती आगे नहीं बढ़ती, पता नहीं किसी ने जादू कर दिया, 100 बातें सोचते सोचते एक दिन शादी की हाँ हो गई, चले जी आपने शर्फी दे दी उन्होंने ले ली, आपने उनको मुबारक की मिठाई भेज दी उन्होंने आपको दी, आप काम शुरू, नेमत मिली है ना, अब आपकी रस्में शुरू, आपके रिवाज शुरू, अब डेट जा रही है, अब शादी की तैयारियां हो गई, अब हॉल बुक हो रहे हैं, अब ये है वो है, और जिस दिन वो शादी का मौका आ जाता है तो उस दिन क्या करते हो, लिया याकफुरु बीमा आते ही ना हो, फिर ना शुक्रिया करते हो, उस दिन तुम ऐसे काम तो नहीं करते जिससे अल्लाह नाराज़ हो, और कोई पूछे तो आगे से कहते हो लो खुशी का तो मौका है, एक ही बार है, बार बार थोड़ी आती है, अकेला भाई है, छोटा बेटा है, पहला बच्चा है, अल्लाह कहता है क्या तुमने अपनी खुशियों में यही रवैया रखा हुआ है कि खुशी में ना अल्लाह को नाराज़ किया तो और कब करूँगी, क्या आज खुशियों के नाम पे हम बाज़ दफ़ा रिबेलियस नहीं बन जाते, क्या हम सरकशी का शिकार नहीं हो जाते, तो पता क्या चला कि इंसानों का इम्बैलेंस एटीट्यूड है, इसलिए आगे कुर्ब इलाही के हसूल के लिए रहनुमाई आयत 38 से 40 में फातिज़ल कुर्बा हक्कहू, अगर आप उंगलियों पे गिनते जाए ना तो यहाँ लग कैसे रिश्तेदारों के हक देने की बात कर रहा है, फिर मिसकीनों को, फिर मुसाफिरों को, और साथ ही बता दिए ये उस अच्छा है उन लोगों के लिए, ज़ालिका खैरुल लिल्लज़ीना युरीदूना वजहल्ला, सिर्फ ये काम वही करेगा जिसको अल्लाह के चेहरे की तलब है, और यही लोग फला पाएंगे, यकीन कीजिए कि रिश्ते जोड़ना आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल है, और रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करने वाले बहुत थोड़े होते हैं, इल्ला माशाल्लाह, बाहर वालों के लिए हम अच्छे, उनको हम बड़ी प्यारी प्यारी बातें भी कहते, हम उनके साथ मुस्कुराते, स्माइल देते, घर आते ही हमारा मूड बिगड़ जाता है, भाई बहनों के साथ 1 मिनट नहीं लगती, अपनी फैमिली को छोड़कर गैरों से ताल्लुकात है, नहीं रिश्ते जोड़े ही नहीं जा सकते जब तक दिल में ये यकीन ना हो कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए कर रही हूँ। और आप देखिए कि जहाँ चूँकि आप देख ही रहे हैं कि सूरत रोम में शादी की बात बहुत हो रही है, आपकी शादी हो गई, किसने आपका रिश्ता चूज़ किया, हमारे कल्चर में अल्हम्दुलिल्लाह और ख़ास तौर पे बिरादरी में अभी तक माँ बाप ही चूज़ करते हैं, होगी कोई बात बच्चे अपनी पसंदीदगी बता दें या बेटा कोई बाहर से किसी को चूज़ कर ले ये अलग बात है, लेकिन अमूमन हम ख़वातीन या बच्चियों के रिश्ते कौन चूज़ करता है, माँ और बाप। अपने लिए एक जुमला लिखिए, मैंने अपने माँ और बाप के किए हुए फैसले की लाज रखनी है, अगर दीन का कोई नक्स नहीं है, हाँ हराम हलाल नहीं, गुना सवाब नहीं, बगावत नहीं, बदनजरी नहीं, लेकिन अगर छोटा मोटा आदतों का इख्तलाफ है कुछ ना कुछ तो फ़र्क होगा, दो बहनें भी अपने बच्चों के रिश्ते करेंगी ना, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, वो दोनों बहनें ही नहीं आपस में मिलती, उनके बच्चे कहाँ मिलेंगे, अब अगर आपको उधर कुछ 19, 21, 19, 20 लगती है, सब्र कीजिए, क्या कहकर, मैं अपने बाप के फैसले की इज्जत करूंगी, मैं अपने बाप को शर्मिंदा नहीं होने दूंगी, तो आप देखेंगे कि जब आप इस सोच से इंसानों से जुड़ते हैं ना, आप कुर्बे इलाही पा लेते हैं।